मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से हम लोग लगातार मुख्य परीक्षा को आधार बनाकर के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। मैं उसी विषय को आज मुख्य विषय के तहत बढ़ाना चाहूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी छोटी छोटी जो घटनाएं हैं या समाचार हैं उन्हें देख लेते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करेंगे। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके पास मुझे ऐसा लगता है कि होनी चाहिए। विश्व आर्थिक मंच, नाम से ही स्पष्ट है कि ये विश्व स्तर का एक मंच है और इसका जो सही जो संबंध है या जो मूल कह लीजिए संबंध है वो अर्थव्यवस्था से है। कैसी होनी चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था, क्या क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, इसके बारे में यह मंच है। दोस्तों, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, हर साल इसका सम्मेलन होता है। सम्मेलन होता है स्विट्जरलैंड के दावोस नामक जगह पर, इसीलिए इसे दावोस सम्मेलन भी कहा जाता है। क्योंकि अब इसकी खबरें अखबारों में आनी शुरू होंगी, आज से यह सम्मेलन शुरू हो रहा है और 21 जनवरी तक चलेगा, तो आप देखेंगे कि वहां जो कुछ भी बातचीत होती होगी उन सब की खबरें अखबारों में आएंगी। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सीधे सीधे इस सम्मेलन पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यानी कि संभावना नहीं है, दावा तो मुझे नहीं करना चाहिए, संभावना नहीं है। क्योंकि अगर मैं सन 2013 से लेकर के और अभी तक के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर की बात करूं तो कभी भी इस पर प्रश्न नहीं पूछा गया है। लेकिन इस सम्मेलन में जो कुछ होगा वह आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, क्योंकि इसमें ढेर सारे मुद्दों पर बातें होंगी और वो मुद्दे सब आपके सामने अखबारों के जरिए आते रहेंगे। तो आपको ध्यान से उन मुद्दों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो मुद्दे होंगे वो छोटे मोटे नहीं होंगे, किसी एक देश या छोटे समूह के बारे में नहीं होंगे, बल्कि वैश्विक मुद्दे होंगे। दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी, स्विट्जरलैंड में ही एक जगह है कोलोगनी, वहां इसका हेडक्वार्टर है। ये बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एग्जैक्ट वर्ड में आप कहना चाहें तो ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल है, नाम से ही स्पष्ट होता है। नॉन गवर्नमेंटल मतलब यानी कि यह किसी सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, सरकार के द्वारा इसकी स्थापना नहीं हुई। नॉन गवर्नमेंटल को आप दूसरे शब्दों में एनजीओ भी कह सकते हैं, जो हमारे एनजीओ कहा जाता है। एंड लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन, लॉबिंग के बारे में मैं जरूर थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हों कि लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लॉबी करने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अमेरिका है और अमेरिका में हम अपनी कोई बात वहां के संसद में मनवाना चाहते हैं कि संसद खासकर वहां इस बात को स्वीकार करे कि हमारे यहां से जो भारतीय जाते हैं उन्हें आसानी से वीजा मिल जाए, समझाने के लिए बोल रहा हूं, और उसके लिए संसद से कोई एक्ट पास करवाना पड़ेगा या जो उस पर अभी बातचीत चल रही है एक्ट के बारे में, तो उसको कुछ सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा नर्म रुख, ताकि वहां की जो पार्लियामेंट है वो अपनाए। अब ये कैसे संभव होगा, हम तो वहां संसद में है नहीं, तो वहां के जो सांसद होंगे जो पार्लियामेंटेरियन है उनके सामने हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। अब हम संसद में जाके बहस में तो भाग ले नहीं सकते, तो जो उस बहस में भाग लेने वाले हैं उनसे हम लॉबिंग करेंगे, मतलब अपना पक्ष उनको समझाने की कोशिश करेंगे, अपना पक्ष उनके सामने रखेंगे, उन्हें इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वो हमारी बात वहां रखे ताकि उसकी संभावना बढ़ सके। इसे कहा जाता है लॉबिंग। देखिए, भारत में लॉबिंग की प्रणाली नहीं है और सच पूछे तो इसे अच्छा भी नहीं माना जाता कि आप उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप अमेरिका वगैरह में ये काफी प्रचलित है लॉबिंग करना, और इसे बुरा नहीं माना जाता है। तो ये जो संस्थान है, जान मान लीजिए कि इकोनॉमिक के बारे में वो कोई बात कहलाना चाह रहा है, कैसे आर्थिक असमानता दूर हो इसके बारे में दुनिया के देशों को कन्विंस करना चाह रहा है, तो इसके लिए क्या करेगा, वो समय समय पर रिपोर्ट जारी करेगा, समय समय पर बातचीत करता रहेगा, यानी कि लॉबिंग करेगा, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह का यह ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों, खासकर अभी सम्मेलन शुरू हो ही रहा है, अखबारों में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़िएगा तो आपको यह भी पता लगेगा कि विश्व में कौन कौन सी किस किस तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि इसका पर्पज ही है कि विश्व के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, उन पर यह विचार करे। लगभग 2500 लोग इसमें भाग लेते हैं, इतनी ठंड में सोच करके देखे स्विट्जरलैंड जैसे देश में भाग लेते हैं, और इसमें सभी तरह के लोग भाग लेते हैं। इसमें बकायदे पॉलिटिशियंस भी आते हैं, इसमें जो बुद्धिजीवी हैं वो भी आते हैं, पत्रकार भी आते हैं, एनजीओ के जो लोग होते हैं वे भी आते हैं, काफी लोग इसमें, हर तरह के लोग का आना होता है, और बकायदे जो संस्थान है वो उनको निमंत्रण भेजता है। ऐसा नहीं कि मैं जाना चाहूं तो मैं चला जाऊं, है ना। दोस्तों, अगर आपने कल रेडियो की न्यूज सुनी होगी तो आपने एक शब्द सुना होगा, पर्पल रेवोल्यूशन। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने ये बात कही थी, स्टार्टअप के संबंध में कही थी, है ना। स्टार्टअप डे कल मनाया गया था, तो पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूंगा। पर्पल का मतलब तो आप समझ गए हैं, बैंगनी कलर जो होता है, तो इस रिवोल्यूशन का संबंध ऐसी चीजों से है जिनका रंग बैंगनी होता है। न्यूज में ही आपने सुना होगा कि उन्होंने कश्मीर की बात कही थी कि कश्मीर का इस मिशन के लिए बहुत योगदान है, इसे पर्पल मिशन भी कहा जाता है। कश्मीर के कुछ विशेष क्षेत्र हैं, कुछ विशेष जिले हैं जहां इनकी संभावना काफी अच्छी है, कि जैसे कि डोडा है, किश्तवार है, राजौरी है, ये न्यूज में आप सुनते होंगे। यहां इनकी खेती करके यहां के जो किसान हैं वो काफी लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, ये जो पर्पल है इसे लेवेंडर मिशन भी कहा जाता है, पर्पल मिशन तो कहा ही जाता है। लेवेंडर का नाम आपने सुना होगा, हिंदी में भी इसका नाम लेवेंडर ही है। क्या आपने लेवेंडर का फूल देखा है? जंगलों में भी मिल जाएगा ये, है ना। इसके बहुत, मुझे लगता है कि दो फिट के आसपास के इसके पतले पतले पौधे होते हैं, पतली पतली पत्तियां होती हैं, और इसमें बड़े खूबसूरत नीले पर्पल रंग के फूल खिले होते हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा मैं चांस ले रहा हूं, कि ये बाइबल में इस तरह का उल्लेख है, या ईसा मसीह के जीवनी में, कि जब ईसा मसीह बच्चे थे तो उनकी जो माँ थी वो ईसा मसीह के कपड़े इन पर्पल के जो पौधे होते थे उन पर ही सुखाया करती थी। बहुत ही खूबसूरत इसकी सुगंध होती है, और मुझे तो लेवेंडर की अगरबत्तियां ही जलानी पसंद है, और मैं इसका उपयोग भी करता हूं। तो लेवेंडर की खेती के लिए इसमें, मतलब कह लीजिए जो सुगंधित पुष्प हैं उनकी खेती को बढ़ावा देने वाला यह मिशन है, पर्पल मिशन, जिसके तहत लेवेंडर आता है। एक डोमास्क जिसे जामदानी कहते हैं, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, वो भी इसी के तहत आता है। और इसी तरह का एक सुगंधित बाला जड़ी बूटी है, सुगंध बाला, ये जड़ी बूटी है। तो इन सब की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। तो इससे तेल निकलता है, और उस तेल का की बहुत ज्यादा डिमांड केवल नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी है। तो दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, स्टार्टअप डे के समय में प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, देश द्वारा देश के लिए। नारा बहुत सरल है, देश द्वारा देश के लिए, हमारे अपने ही लोग प्रोड्यूस करें और अपने ही देश के लिए प्रोड्यूस करें, बाद में तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे। तो बस आप दिमाग में थोड़ी सी ये बात रखिएगा कि कभी अगर स्टार्टअप को लेकर के, आत्मनिर्भरता को लेकर के कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप चाहे तो इसे भी उसमें मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक लेटेस्ट नारा है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, क्यों नहीं लिख पाते हम उत्तर। इस पर डेफिनेटली ये आप लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, और आप लोगों की ही नहीं बल्कि ज्यादातर लोगों की यही समस्या होती है। एक बात मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहूंगा, देखिए, उत्तर का लिखा जाना अंतिम चरण है। आप जो भी प्रिपरेशन करते हैं अंततः इसी बात के लिए करते हैं कि आप उत्तर लिख सकें। प्री में आप सही उत्तर की तलाश कर सके, है उत्तर ही, लेकिन मुख्य परीक्षा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वहां तलाश नहीं करनी है, आपको सीधे सीधे लिखना है। वहां तो तलाश करने के लिए आपको चार चीजें दे दी गई हैं प्री में, लेकिन मेंस में तो आपको कुछ नहीं दिया गया है। तो पूरी जो तलाशी आपको करनी है वो अपने दिमाग में ही करनी है, और केवल तलाशी करके निशान लगाने से वहां बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको फ्रेमिंग भी करनी है कि आपके दिमाग ने आपको जितने भी चीजें प्रोवाइड की हैं आप उनको कैसे सिलसिलेवार लगाएं, उसमें से कौन सी बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें टॉप पर रखें, किस भाषा में उसे प्रस्तुत करें, कैसे उसका पूरा का पूरा ढांचा तैयार करें, ये सारी की सारी चुनौतियां होती हैं। और इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आपके पास वक्त नहीं होता है। एक बात यदि आप इस पर विश्वास कर सकें तो, कि अगर हम उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका जो कारण है वह एकमात्र कारण यह है कि इस विषय को हमने ठीक तरीके से समझा नहीं है। और समझा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ठीक तरीके से इसे पढ़ा नहीं है। क्या आप सच में विश्वास करेंगे कि अभी भी मेरे पास डेली 4-5 मेल इस प्रश्न को लेकर के आते हैं कि सर आपका डेली ऑडियो लेक्चर सुन लेते हैं, आप जो अखबारों की क्लिपिंग्स प्रोवाइड करते हैं हम वो भी पढ़ लेते हैं, और यदि हम इतना ही पढ़ लें तो क्या अखबार पढ़ने की जरूरत है? ये उनका प्रश्न होता है। मैं सच पूछिए तो इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं और कोई स्टूडेंट और फिर ये भी लिखता है कि आईएएस बनना मेरा सपना है, तो मैं अंदर से हिल जाता हूं। क्योंकि अगर आईएएस बनना आपका सपना है तो ये प्रश्न उठ क्यों रहा है कि क्या अखबार पढ़ना जरूरी है? अभी मैंने जो ये प्रश्न किया कि अखबार पढ़ना जरूरी है, ये जो बात कही है, क्या इसका संबंध उत्तर लिखने से है? अगर आप केवल क्लिपिंग्स के दम पर, मैं क्लिपिंग्स में क्या भेजता हूं आपको, क्लिपिंग्स में दो चीजें होती हैं, एडिटोरियल कमेंट्स, संपादकीय जिसे आप कहते हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स, उसमें चीजें संक्षिप्त रूप में दी हुई हैं और उसमें घटनाओं का परिवेश नहीं है, बिल्कुल परिवेश नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो एक मैं आपको आर्टिकल प्रोवाइड कर देता हूं या 2-3 आर्टिकल आपने पढ़ लिए, एक बात हो गई, लेकिन आपने अखबार में इसके बारे में पूरे घटनाक्रम को पढ़ा है, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आप केवल इन दोनों के अंतर पर विचार कीजिए कि किस पढ़ाई के तहत आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा संबंधी पूछे गए प्रश्न का उत्तर बेहतर तरीके से दे सकेंगे, शायद आपको अपना उत्तर मिल जाए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं नीलेश सुमन चौधरी और काजल सेन गुना मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।